इस वक्त सब जानवी के माँ के कमरे में बैठे हुए थे। जानवी की माँ कोमा से तो बाहर आ गई थी, लेकिन जब से वो कोमा से बाहर आई थी तब से ही वो किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि चुपचुप ही रहती थी। उनके शरीर पर अभी भी पैरालाइज था, इसीलिए उन्हें कहीं भी लाने ले जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया जाता था। जानवी रोते हुए अपनी माँ के पास बैठती है और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, माँ मुझे पता है आप सुन रही हैं, देखिए ना ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप सुन रही हैं ना, इन्हें बताइए कि ये सब झूठ कह रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही ने मुझे जन्म दिया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। जानवी की माँ धीरे से उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में जो अब तक खालीपन और सूनापन था वहाँ पर आंसू आ जाते हैं। जानवी एक नज़र सक्षम को देखती है जो भावुक चेहरे के साथ उन्हें देख रहा था। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जानवी की माँ को देखकर कहा, कुछ भी झूठा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है और अब तुम्हारा काम है कि तुम जानवी को सच्चाई बताओ, नहीं तो जानवी को सच बताने के और भी तरीके हैं। जानवी के आंसू और तेज हो गए और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जानवी की माँ ने जानवी और सक्षम को देखते हुए कहा, जानवी, ये आवाज़ बहुत धीरे थी, शायद वो बोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जानवी ने अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लिया और उनसे कहा, हाँ कहो माँ, मैं सुन रही हूँ। जानवी की माँ ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बहुत मुश्किल से शब्दों को संभालते हुए जानवी से कहा, मुझे माफ़ कर दो जानवी, लेकिन यही सच है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें चुरा कर लाई थी। अपनी माँ की बात सुनकर जानवी पूरी तरह से हिल गई थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। बाकी सब लोग भी उनकी बात सुनकर एकदम से हक्के बक्के रह गए थे। जानवी रोते हुए अपनी माँ को गले से लगाती है और कहती है, नहीं माँ नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ कह रही हो। तुम झूठ क्यों कह रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, कह दो ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सक्षम आता है और जानवी के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने लगता है। जानवी रोते हुए अपनी माँ से अलग होती है, लेकिन उसे अपनी माँ की बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जानवी की माँ ने उसके चेहरे को देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। जानवी की माँ ने फिर से अपने टूटे फूटे शब्दों में जानवी को देखकर कहा, जानवी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी औकात के अनुसार तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी, पर जिस परिवार की तुम बेटी हो उस परिवार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं कैसे उन लोगों को खुश देख सकती थी। मेरे पति और मैं, हम दोनों तुम्हारे परिवार के घर में छोटे मोटे काम किया करते थे। मेरे पति ड्राइवर थे और मैं घर के काम किया करती थी, साथ ही साथ मैं उस घर के बच्चों की भी केयरटेकर थी। पर एक दिन एक कार एक्सीडेंट में, जहाँ पर सक्षम के माता पिता गुजर गए, इस कार एक्सीडेंट में मेरे पति भी गुजर गए थे। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन सहारा थी तो सिर्फ मेरी बेटी, जो उस समय सिर्फ 2 महीने की थी। अपने पति के गुजरने के दुख में मैं अपनी बेटी पर ध्यान भी नहीं दे पाई थी और इस वजह से वो बीमार रहने लगी थी। जब मुझे होश आया तब तक मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरे मालिक और मालकिन तो गुजर गए थे, लेकिन उस घर में जो और लोग थे मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन अब वहाँ की मालकिन सक्षम बाबा की चाची, जिन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी बच्ची ने मेरे गोद में ही दम तोड़ दिया था। मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं था, लेकिन सक्षम बाबा के साथ उनकी बहन को जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरी बेटी की ही याद आती थी। उस परिवार की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, तो कैसे उस परिवार से कुछ नहीं छीनती। इसीलिए मैं तुम्हें लेकर वहाँ से भाग गई, मेरी बेटी के बदले उनकी बेटी। मुझे पता था अगर मैं अपने शहर जाऊँगी या अपने गाँव जाऊँगी तो मुझे ढूंढ लेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर मुंबई चली गई। वहाँ पर एक नई पहचान के साथ मैं तुम्हारे साथ रहती थी। मुझे एक बात का डर हमेशा लगा रहता था कि एक ना एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता ज़रूर चलेगा, और इसकी सबसे बड़ी निशानी थी तुम्हारे हाथ में मौजूद वो नाम जिसे मैंने बचपन में ही जलाकर मिटा दिया था। शहर शहर बदलकर भटक भटक कर मैं थक गई थी, लेकिन तुम्हें खोने का डर मेरे दिल से कभी नहीं गया, और कभी कभी तो अफसोस भी होता था कि मैंने एक अच्छे भले घर के बच्चे को किस तरीके से दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था। वो कहते हैं ना, लोगों को उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। मुझे भी मेरे कर्मों की सज़ा मिली थी। मैं पैरालाइज हो गई और कोमा में चली गई, और तुम मुझे बचाने के लिए जगह जगह नाच कर पैसे जुगाड़ करने लगी। भले ही मैं कोमा में थी, लेकिन मुझे सब पता चल रहा था कि किस तरीके से तुम मुझे बचाने के लिए मेहनत कर रही हो, कोशिश कर रही हो। और उस दिन मैंने ऊपर वाले से एक दुआ मांगी कि अगर मेरे पास कुछ सांस बची है और मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे सामने ये सच्चाई ज़रूर लाऊंगी। शायद मैंने जो पाप किए हैं उसका यही पश्चाताप है। ये कहकर जानवी की माँ रोने लगती है। जानवी को अपने कान पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई थी, पर सक्षम के चेहरे पर खुशी थी। कितने सालों की उसकी बिछड़ी बहन उसे वापस मिल गई थी। जानवी की माँ की बात सुनकर सारा परिवार हैरान रह गया था, लेकिन सबको जानवी और सक्षम के लिए खुशी थी। सब देख सकते थे कि सक्षम किस तरीके से जानवी को ढूंढने के लिए बेचैन रहता था। जानवी हताश और रोते हुए चेहरे के साथ सक्षम को देखती है तो सक्षम मुस्कुराते हुए जानवी के पास आता है और उसकी आंसू साफ करता है। जानवी खड़ी होती है और एक झटके से सक्षम के गले से लग जाती है। वो जोर जोर से सक्षम को पकड़कर भाई भाई करके चिल्लाने लगती है। आंसू तो सक्षम के भी निकल रहे थे। कितने सालों बाद उसकी बहन जो मिल गई थी।